एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आपका एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पॉल फॉस्टर की द अपोक्रिफल गॉस्पल्स। ये इतिहास, धर्म और कहानी कहने के एक अनोखे संगम जैसी है।
नमस्कार। हाँ, ये वो प्राचीन ईसाई ग्रंथ है, मतलब वो गॉस्पल्स जो बाइबल के न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन शुरुआती ईसाई धर्म को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्सर लोग इन्हें छिपे हुए या खोए हुए ग्रंथ मानते हैं।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये आज भी इतने रोमांचक लगते हैं, है ना? फिल्मों में, नॉवेल्स में अक्सर सनसनीखेज दावे होते हैं इनके बारे में।
हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये किताब, जैसा हम देखेंगे, एक बहुत ही संतुलित, एक ऐतिहासिक नजरिया देती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये उस जमाने की सोच, उसकी विविधता का आईना है।
सही कहा, और ये हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी बड़ी विचारधारा या धर्म शुरू में बिल्कुल सीधा सपाट नहीं होता। कई धाराएं होती हैं, कई तरह के विचार होते हैं, और हाँ, आज के जमाने में जहाँ इतनी जानकारी है, कन्फ्यूजन भी है।
हाँ बिल्कुल।
ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि जानकारी को परखें कैसे, स्रोत क्या है, लिखने वाले का मकसद क्या था, ये सब।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, पॉल फॉस्टर। ये नाम शायद बहुतों ने ना सुना हो, पर अपने फील्ड में बहुत बड़ा नाम है।
हाँ बिल्कुल, पॉल फॉस्टर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में न्यू टेस्टमेंट और अर्ली क्रिश्चियनिटी के प्रोफेसर हैं, और एडिनबर्ग इस विषय के लिए दुनिया की टॉप जगहों में से एक है। वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, नोवम टेस्टमेंटम नाम की एक बहुत ही जानी मानी अकेडमिक पत्रिका के एडिटर भी हैं।
अच्छा, तो मतलब ये वो जगह है जहाँ इस विषय पर सबसे अहम रिसर्च छपती है।
हाँ, तो वहाँ एडिटर होना ही अपने आप में बताता है कि उनकी विशेषज्ञता किस स्तर की है।
यानी हम किसी नौसिखिए की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके नजरिए में ऐसी क्या खास बात है?
सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ बाइबल के स्वीकृत ग्रंथ यानी कैनन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बहुत वक्त और रिसर्च इन्हीं गैर कैनोनिकल यानी एपोक्रिफल गॉस्पल्स पे लगाई है। यही बात उन्हें बैलेंस्ड बनाती है। वो न तो इन्हें ऐसे देखते हैं कि यही असली सच था जिसे दबा दिया गया, जैसे कुछ नॉवेल्स में दिखाते हैं।
हाँ हाँ, वो डैन ब्राउन वाला एंगल।
बिल्कुल, और न ही वो इन्हें सिरे से खारिज करते हैं कि ये सब बकवास है, बेकार की कहानियां हैं। उनका अप्रोच सबूतों पर आधारित है। वो हर टेक्स्ट को उसके अपने हिस्टोरिकल लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कब लिखा गया, क्यों, किसके लिए। उनका मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि समझना और समझाना है। भाषा भी ऐसी है कि अकादमिक रूप से पक्की होते हुए भी आम पाठक समझ सकता है।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा कि इसमें गलतफहमियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हैं, तो एक भरोसेमंद आवाज का होना अच्छा है। चलिए अब किताब पर आते हैं। इसका मूल आइडिया क्या है?
देखिए, किताब का सार ये है कि ये उन प्राचीन ईसाई लेखनों का एक परिचय है जिनमें जीसस के जीवन और शिक्षाओं की बातें हैं, पर जो फाइनल न्यू टेस्टमेंट में शामिल नहीं हुए। और फॉस्टर सबसे पहले इस आम धारणा को तोड़ते हैं कि इन किताबों को किसी चर्च काउंसिल ने, जैसे नाइसिया वाली काउंसिल ने, 4वीं सदी में साजिश करके बैन कर दिया था।
अच्छा, ये बात तो मैंने भी कई बार सुनी है कि चर्च ने सच छुपाने के लिए ऐसा किया। तो अगर ये सच नहीं, तो फिर हुआ क्या था? ये बाहर क्यों रह गए?
फॉस्टर का पहला मेन पॉइंट यही है कि कैनन यानी आधिकारिक ग्रंथों का जो कलेक्शन है, वो किसी एक मीटिंग का नतीजा नहीं था। ये सदियों तक चलने वाली एक धीमी ऑर्गेनिक प्रक्रिया थी।
ऑर्गेनिक प्रक्रिया मतलब?
मतलब ये कि शुरुआती सदियों में जीसस के बारे में दर्जनों ग्रंथ थे जो अलग अलग ईसाई समुदायों में पढ़े जा रहे थे, इस्तेमाल हो रहे थे। ये एक तरह का विचारों का बाजार था।
अच्छा, जैसे आजकल होता है, कुछ चीजें ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, कुछ कम।
हाँ, कुछ वैसा ही। कुछ ग्रंथ ज्यादा फैल गए, ज्यादा समुदायों ने उन्हें अपनाया, शायद इसलिए कि वो प्रेरितों अपोसल्स से जुड़े माने जाते थे, या उनकी शिक्षाएं ज्यादातर लोगों की मान्यताओं से मेल खाती थीं, या वो ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल होते थे। कुछ ग्रंथ लोकल ही रहे या धीरे धीरे चलन से बाहर हो गए। ये कोई गुप्त साजिश नहीं थी, बल्कि एक तरह का स्वाभाविक चयन था।
ये तो हुई कैनन बनने की बात, लेकिन जो ग्रंथ बाहर रह गए, उनका क्या? क्या वो सब नकली या गलत थे?
यही फॉस्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि हमें इन्हें सिर्फ झूठा या विधर्मी या हेरेटिकल कहकर फेंक नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ की बातें बाद में मुख्य धारा से अलग मानी गईं, पर ये सारे ग्रंथ उस शुरुआती दौर की जबरदस्त विविधता को समझने के लिए बहुत कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उस समय की खिड़कियां हैं ये।
मतलब ये हमें बताते हैं कि उस वक्त केसाई कैसे सोचते थे, क्या सवाल थे उनके मन में।
बिल्कुल, और यही फोस्टर का तीसरा पॉइंट है। ये दिखाते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स ने जीसस को कैसे समझा, उन सवालों से कैसे जूझे जिनका जवाब शायद कैनन वाले गॉस्पल्स में साफ साफ नहीं था। जैसे जीसस का बचपन कैसा था, उनकी माँ मरियम असल में कौन थी, मरने और दोबारा जी उठने के बीच उन्होंने क्या किया। इन ग्रंथों ने इन खाली जगहों को भरने की कोशिश की, अक्सर काफी कल्पनाशील और नाटकीय कहानियों से।
तो किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो यही हुआ कि बाइबल में न शामिल हुए ये गॉस्पल्स हमें ईसाई धर्म के इतिहास और जीसस की विरासत के बारे में क्या सिखा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसका जवाब किताब परत दर परत देती है।
चलिए अब और गहराई में चलते हैं। फॉस्टर कैसे इन ग्रंथों को हमारे सामने रखते हैं? किताब की शुरुआत एपोक्रिफल शब्द के मतलब से होती है ना?
हाँ, वो समझाते हैं कि ये शब्द का मतलब टाइम के साथ बदला है। शुरू में मतलब था छिपा हुआ या गुप्त, शायद उन ग्रंथों के लिए जो किसी खास ग्रुप के अंदर ही पढ़े जाते थे। बाद में जब कैनन बन गया तो इसका मतलब हो गया गैर प्रमाणिक या नकली। फॉस्टर इस पर जोर देते हैं कि शुरू की सदियों में कैनोनिकल और एपोक्रिफल के बीच कोई दीवार नहीं थी, लाइन बहुत धुंधली थी।
ये समझना जरूरी है कि एक प्रोसेस था। अच्छा, क्या फॉस्टर इन ग्रंथों को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं ताकि हम समझ सके कि ये कितने अलग अलग तरह के थे?
हाँ, मोटे तौर पे वो कुछ श्रेणियां बताते हैं, पर ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे कुछ ग्रंथ थे जो शायद कैनन के दावेदार हो सकते थे पर सबको मंजूर नहीं हुए। कुछ कैनन को सप्लीमेंट करते थे, मतलब जो बातें बाइबल में कम थीं उनको बताते थे, खासकर जीसस के जन्म और बचपन के बारे में।
और कुछ शायद मुख्य धारा से काफी अलग रास्ते पर थे।
बिल्कुल, कुछ ग्रंथ जैसे कई नॉस्टिक ग्रंथ, वो तो एक बिल्कुल ही अलग धार्मिक नजरिया रखते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया बुरी है और मुक्ति मिलती है गुप्त ज्ञान यानी ग्नोसिस से। और फिर कुछ ग्रंथ और भी बाद में लिखे गए जिनमें पुरानी कहानियों में और ज्यादा लोक कथाओं वाले काल्पनिक तत्व जोड़ दिए गए थे।
तो ये विविधता ही अपने आप में काफी कुछ कहती है। अब उन ग्रंथों पर आते हैं जो बाइबल की एक बड़ी कमी को पूरा करते हैं, यानी जीसस के बचपन के बारे में।
सही, बाइबल में मैथ्यू और ल्यूक के गॉस्पल्स में जीसस के जन्म का जिक्र है और फिर सीधे 12 साल की उम्र में मंदिर जाने का। बीच का पूरा वक्त खाली है, तो लोगों में ये जानने की इच्छा थी कि उनका बचपन कैसा था। इसी खालीपन को कुछ एपोक्रिफल ग्रंथों ने भरा,
जैसे कि वो प्रोटो इवेंजेलियम ऑफ जेम्स। नाम तो बड़ा मुश्किल सा है।
हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर कहानी बहुत दिलचस्प है। ये दूसरी सदी का ग्रंथ असल में जीसस से ज्यादा उनकी माँ मरियम पर फोकस करता है। इसमें मरियम का चमत्कारी जन्म, उनके मंदिर में बड़े होने और कैसे जोसेफ को, जो एक बूढ़े विधुर थे, उनका संरक्षक चुना गया, ये सब बताया गया है। और ये मरियम के हमेशा कुंवारी रहने के विचार पर बहुत जोर देता है।
और फोस्टर कहते हैं कि इसका असर बहुत गहरा रहा, भले ही ये बाइबल में नहीं है।
हाँ, बहुत ज्यादा। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में मरियम से जुड़े कई सिद्धांत, त्योहार और कला में उनके जो चित्र बनते हैं वो इसी ग्रंथ से प्रभावित हैं। ये दिखाता है कि कैसे गैर कैनोनिकल टेक्स्ट भी धार्मिक परंपरा को शेप दे सकते हैं।
ये तो भी मरियम की कहानी, लेकिन जीसस के बचपन के बारे में एक और टेक्स्ट है, इन्फेंसी गॉस्पल ऑफ थॉमस। सुना है ये काफी अलग है।
हाँ, ये शायद सबसे चौंकाने वाले ग्रंथों में से एक है। ये जीसस को एक ऐसे बच्चे के रूप में दिखाता है जिसके पास दैवीय शक्ति तो है पर उसे अभी कंट्रोल करना नहीं आता। वो मिट्टी के पक्षियों को छूकर जिंदा कर देते हैं, ये तो ठीक है।
हाँ।
लेकिन जब कोई बच्चा खेलते हुए उनसे टकरा जाता है तो वो गुस्से में उसे श्राप देकर मार देते हैं, हालांकि बाद में उसे जिंदा भी कर देते हैं।
बाप रे, ये क्या है? ये तो किसी सुपर हीरो टाइप की कहानी लग रही है जिसकी शक्तियां कंट्रोल में नहीं है।
हाँ, कुछ वैसा ही। फॉस्टर का तर्क है कि ये ग्रंथ शायद इस थियोलॉजिकल सवाल से जूझ रहा था कि अगर जीसस जन्म से ही पूरी तरह ईश्वर थे तो एक इंसान बच्चे के तौर पर वो कैसे रहे होंगे। ये उस समय की कल्पना दिखाता है कि कैसे एक डिवाइन बच्चा अपनी शक्तियों से डील कर रहा होगा। हिस्टोरिकली सही हो ना हो, पर उस दौर की सोच समझने के लिए जरूरी है।
अब आते हैं उन ग्रंथों पे जो जीसस की पब्लिक मिनिस्ट्री यानी उनके उपदेशों और चमत्कारों पर फोकस करते हैं। इनमें गॉस्पल ऑफ थॉमस का नाम बहुत आता है।
हाँ, ये 1945 में मिस्र के नाग हम्मादी में मिला था कई और ग्रंथों के साथ। ये पारंपरिक गॉस्पल जैसा नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है। ये जीसस से जोड़ी गई 114 रहस्यमयी कहावतों का कलेक्शन है। कुछ कहावतें बाइबल के गॉस्पल्स जैसी हैं, कुछ बिल्कुल नई और अजीब सी लगती हैं।
और इसकी खोज ने काफी हलचल मचाई थी, है ना?
बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये उठा कि क्या ये कहावतें बाइबल के गॉस्पल से भी पुरानी और इंडिपेंडेंट है? क्या ये जीसस के शब्दों का ज्यादा ओरिजिनल रूप है? इस पर आज भी स्कॉलर्स में बहस होती है, और इसमें कई कहावतों में नॉस्टिक फिलॉसफी का असर दिखता है कि मुक्ति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर के गुप्त ज्ञान ग्नोसिस को पाने से मिलती है। ये गॉस्पेल की हमारी परिभाषा को ही चैलेंज करता है।
इसके अलावा यहूदी, ईसाई, ज्यूइश, क्रिश्चियन गॉस्पेल्स का भी जिक्र है। ये कौन लोग थे?
शुरुआती ईसाई धर्म में कई ऐसे ग्रुप थे जिनका यहूदी धर्म से गहरा नाता था, जैसे नाजरीन, एबियोनाइट्स। उनके अपने गॉस्पेल्स थे जिनके आज सिर्फ टुकड़े ही मिलते हैं, वो भी दूसरों की लिखाई में। फोस्टर बताते हैं कि ये ग्रंथ अक्सर जीसस को एक महान यहूदी पैगंबर की तरह देखते थे जो यहूदी नियमों को मानते थे। ये दिखाते हैं कि ईसाई धर्म का यहूदी धर्म से अलग होना एक धीमी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया थी।
इन्हें शुरू में ईसाई होने का मतलब यहूदी न होना नहीं था। ये जरूरी बात है। एक और उदाहरण है गॉस्पेल ऑफ पीटर। इसमें क्या खास है?
इसके भी कुछ हिस्से ही मिले हैं, खासकर जीसस के दुख भोग और पुनरुत्थान के। इसमें एक खास बात यह है कि ये रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस को काफी हद तक बेकसूर दिखाता है, और ज्यादा दोष यहूदी राजा हेरोदिस और यहूदी अधिकारियों पर डालता है। शायद उस समय के राजनीतिक माहौल का असर हो।
और इसका पुनरुत्थान वाला सीन तो और भी अजीब बताया जाता है।
हाँ, वो तो बहुत ही अनोखा है। उसमें दिखाते हैं कि दो विशाल फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, कब्र का पत्थर खुद ही लुढ़क जाता है, वो जीसस को सहारा देकर बाहर लाते हैं, और उनके पीछे पीछे एक बोलता हुआ क्रॉस आता है।
क्या? बोलता हुआ क्रॉस?
हाँ, क्रॉस से आवाज आती है, क्या तुमने सोए हुओं को उपदेश दिया? और क्रॉस जवाब देता है, हाँ। फॉस्टर इसे शायद हाई क्रिस्टोलॉजी, जीसस के ईश्वरत्व पर बहुत ज्यादा जोर, और संभवतः डॉसिटिज्म, ये विचार कि मसीह का शरीर सिर्फ एक भ्रम था, के असर के तौर पर देखते हैं।
वाकई कमाल की कल्पना है। अब उन ग्रंथों पर आते हैं जो जीसस के जीवन के अंत यानी दुखभोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके बाद शिष्यों को दर्शन देने पर और ज्यादा बात करते हैं,
जिसे एक्ट्स ऑफ पिलाटे भी कहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य युग में यूरोप में बाइबल की कहानियों जितना ही पॉपुलर था। इसका पहला हिस्सा पिलातुस के सामने जीसस के मुकदमे का बड़ा डिटेल्ड, लगभग एक कानूनी रिकॉर्ड जैसा ब्यौरा है। इसमें फिर से पिलातुस को थोड़ा मजबूर और यहूदी नेताओं को मुख्य विलेन दिखाया गया है।
और इसका दूसरा हिस्सा जो ज्यादा मशहूर है
वो है डिसेंसिस एड इन्फेरोस, यानी नरक में अवतरण। ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है कि कैसे जीसस ने अपनी मौत और दोबारा जीव उठने के बीच के समय में नरक या अधोलोक के दरवाजे तोड़े, शैतान को हराया, और पुराने नियम के सभी नेक लोग, आदम, हव्वा, इब्राहिम, मूसा वगैरह को वहां से छुड़ाया।
ये कहानी बाइबल में तो नहीं है, पर इतनी पॉपुलर कैसे हो गई?
फॉस्टर बताते हैं कि इसने एक बड़े थियोलॉजिकल सवाल का जवाब दिया। उन अच्छे लोगों का क्या हुआ जो जीसस के आने से पहले मर गए थे? इस कहानी ने एक जवाब दिया, और ईसाई आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। कई मशहूर पेंटिंग्स इसी पर आधारित हैं।
और पुनरुत्थान के बाद वाले डायलॉग्स वाले ग्रंथ भी हैं।
हाँ, जैसे एपिस्टोला अपोस्टोलोरम। इन ग्रंथों में जी उठे जीसस अपने शिष्यों के साथ हफ्तों या महीनों तक रहते हैं, उनके गहरे सवालों के जवाब देते हैं। दुनिया का अंत कब होगा, पाप क्या है, आत्मा का क्या होता है वगैरह। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि लोगों में और ज्यादा जानने की, डायरेक्ट रहस्य जानने की इच्छा थी, जो शायद कैनन वाले गॉस्पल्स पूरी नहीं करते थे।
और फोस्टर का एक पॉइंट ये भी है कि ये गॉस्पल लिखने की परंपरा सिर्फ शुरुआती सदियों में खत्म नहीं हुई।
बिल्कुल। वो कहते हैं कि जीसस की कहानी और शख्सियत इतनी इंस्पायरिंग रही है कि हर पीढ़ी ने उन्हें अपने तरीके से समझने और बयान करने की कोशिश की है। ये एपोक्रिफल गॉस्पल्स उस क्रिएटिव प्रोसेस के सबसे शुरुआती और अहम उदाहरण है, लेकिन ये प्रोसेस किसी न किसी रूप में हमेशा चलता रहा है।
तो इस पूरी चर्चा और किताब को अगर समेटें तो इससे कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं? आप 3-4 सबसे जरूरी क्या मानेंगी?
मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक है शुरुआती ईसाई धर्म की कमाल की विविधता। ये कोई एक जैसा सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट नहीं था शुरू में। ये तो विचारों, विश्वासों, प्रैक्टिसेस का एक गुलदस्ता था। इसमें यहूदी जड़ों वाले ग्रुप थे, यूनानी फिलॉसफी से प्रभावित ग्रुप थे, नॉस्टिक थे और वो भी थे जो बाद में ऑर्थोडॉक्स यानी मुख्य धारा बने। ये ग्रंथ इस मल्टीप्लिसिटी का सबूत है।
और दूसरा शायद ये कि इन ग्रंथों ने लोगों की कहानी सुनने और भावनात्मक जरूरतें पूरी की। बाइबल बहुत सी बातें नहीं बताती, जीसस का बचपन, मरियम की कहानी, मौत के बाद क्या हुआ। लोगों के मन में सवाल थे, इन ग्रंथों ने उन खाली जगहों को कहानियों से भरा। हो सकता है वो ऐतिहासिक ना हो, पर लोगों को उनसे जुड़ाव महसूस होता था, जैसे अपने आप ही होता है ना। पुराणों में देवताओं की कितनी कहानियां हैं जो शायद वेदों में नहीं मिलती।
हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तीसरा, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, ये गंभीर धार्मिक और दार्शनिक सवालों से जूझने की कोशिश थी। जीसस कौन थे? इंसान, भगवान या दोनों? मोक्ष कैसे मिलता है, विश्वास से, कर्म से या गुप्त ज्ञान से? इन ग्रंथों में इन सवालों पर अलग अलग जवाब मिलते हैं जो उस समय की बौद्धिक बहसों को दिखाते हैं।
और चौथा, जैसा आपने पहले भी कहा कि इनका ऐतिहासिक महत्व इनकी फैक्ट्स में नहीं बल्कि इस बात में है कि ये उस समय के लोगों के बारे में क्या बताते हैं। ये ग्रंथ हमें उन समुदायों की सोच, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनकी क्रिएटिविटी की झलक देते हैं। ये ईसाई धर्म के इतिहास के स्रोत हैं, भले ही सीधे जीसस के इतिहास के ना हो।
बिल्कुल, संक्षेप में यही मुख्य बातें हैं। ये हमें सिखाते हैं कि इतिहास अक्सर उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रंगीन होता है जितना हमें लगता है।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार होंगे जो इन बातों को और अच्छे से सामने लाते हैं, क्या कुछ ऐसी यादगार विचार आप बता सकती हैं?
हाँ, फोस्टर की लिखाई में ऐसे कई मोमेंट्स हैं। एक विचार जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो ये है, लगभग उनके शब्दों में, गैर कैनोनिकल गॉस्पल्स बैन की हुई किताबों का कलेक्शन नहीं है जिन्हें साजिश से दबाया गया, बल्कि ये उस जबरदस्त धार्मिक रचनात्मकता और विविधता के लिटरेरी सबूत है जो ईसाई मूवमेंट की पहली कुछ सदियों की पहचान थी। ये सीधे सीधे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को काटता है।
ये बिल्कुल साफ है। और कोई
एक और जो इन ग्रंथों की नेचर को समझाता है, जहां कैनन वाले गॉस्पल्स अक्सर एक डिग्निफाइड चुप्पी रखते हैं, खासकर जीसस के बचपन के बारे में, वहीं एपोक्रिफल गॉस्पल्स एक पवित्र और अक्सर बेलगाम कल्पना से भरे हैं जो उन सवालों के जवाब खोजते हैं जिन्हें ज्यादा संयमित कहानियों ने पूछने की हिम्मत नहीं की। ये दिखाता है कि इनके पीछे इंसानी जिज्ञासा थी, कहानी को पूरा करने की इच्छा।
और एक तीसरा जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है
वो ये है, गॉस्पल ऑफ थॉमस या गॉस्पल ऑफ पीटर सच है या नहीं, ये पूछना ही गलत सवाल है। ज्यादा काम का सवाल ये है, ये टेक्स्ट हमें उस कम्युनिटी के बारे में क्या बताता है जिसने इसे बनाया और इस्तेमाल किया, और ये ईसाई धर्म की किस अलग सोच को दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि इन ग्रंथों को सबूत की तरह कैसे देखें, फैक्ट्स के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए।
ये वाकई नजरिए को बदलने वाले विचार हैं। अब सवाल ये है कि इन पुरानी, शायद कुछ लोगों को अजीब लगने वाली किताबों के अध्ययन से आज हमें क्या सीखने को मिलता है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है?
मुझे लगता है कई अहम सबक हैं। पहला, और आज के दौर में शायद सबसे जरूरी, स्रोत साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी डेवलप करना। जैसे हम इन ग्रंथों के बारे में पूछते हैं, किसने लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए, क्या एजेंडा था, वैसे ही हमें आज मिलने वाली हर इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, न्यूज हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, उसे परखना सीखना चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है।
ये तो बहुत ही रेलेवेंट है। और दूसरा, शायद धार्मिक विविधता और टॉलरेंस को बेहतर समझना।
बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े धर्म भी शुरू में कितने विविध थे, और जिसे आज हम मुख्य धारा कहते हैं वो कई धाराओं में से एक थी जो वक्त के साथ आगे बढ़ी, तो शायद हम अपने विश्वासों को लेकर थोड़े और विनम्र हो सकते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा सहनशील। ये कट्टरता को चुनौती देता है। भारत जैसा देश जहां इतनी धार्मिक विविधता है, इस सबक को शायद और बेहतर समझ सकता है।
और कहानी कहने की ताकत की अहमियत समझना भी एक सीख हो सकती है।
यकीनन, ये ग्रंथ दिखाते हैं कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो पहचान बनाती हैं, समुदाय बनाती हैं, मुश्किल सवालों का जवाब देती हैं और इतिहास का रुख भी मोड़ सकती हैं। हम सब कहानियों के जरिए ही तो दुनिया को समझते हैं।
और शायद एक आखिरी बात, क्या ये न्यू टेस्टामेंट को ही बेहतर समझने में मदद नहीं करते?
हाँ, सुनने में शायद उल्टा लगे, लेकिन जो ग्रंथ बाइबल में नहीं है उन्हें समझने से हमें उन ग्रंथों की अहमियत और कॉन्टेक्स्ट बेहतर समझ आता है जो बाइबल में है। हमें पता चलता है कि कैनन क्यों बना, किन विचारों को चुना गया और क्यों छोड़ा गया। बाइबल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में ज्यादा जिंदा हो उठती है।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी का विषय नहीं, इससे हमें आज के जीवन के लिए भी कई इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं।
बिल्कुल, अगली बार जब कोई इतिहास या धर्म के बारे में कोई सनसनीखेज दावा करे तो फॉस्टर की किताब हमें याद दिलाएगी कि रुके, सवाल पूछे और कहानी के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे यादगार चीज क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सच या इतिहास अक्सर एक सीधी सपाट कहानी नहीं होता। शुरुआती ईसाई धर्म की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेयर्ड और अक्सर झगड़ों से भरी कहानी है। जिसे हम आज ऑर्थोडॉक्स या स्थापित परंपरा कहते हैं, वो कई ऑप्शंस में से एक थी जिसने एक लंबी और कभी कभी मुश्किल प्रक्रिया से अपनी जगह बनाई। ये जानना इतिहास को ज्यादा मानवीय और दिलचस्प बनाता है।
और मेरे लिए शायद सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि कैसे इंसानी जिज्ञासा, कहानी कहने की इच्छा और अपने ईश्वर या हीरो को और करीब से जानने की चाहत ने इन कमाल के ग्रंथों को जन्म दिया। ये ग्रंथ चाहे कितने भी काल्पनिक लगें, उन शुरुआती समुदायों की उम्मीदों, उनके डर, उनके सवालों और उनकी गहरी आस्था की गवाही देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं, बल्कि जीते जागते, सांस लेते समुदायों का अनुभव है।
और एक आखिरी सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम किसी भी इतिहास, किसी भी परंपरा को देखते हैं, तो क्या उन आवाज़ों को सुनना जरूरी नहीं है जो हाशिए पर धकेल दी गईं या मेन कहानी में गुम हो गईं? क्या किनारे की कहानियां हमें केंद्र के बारे में कुछ नया नहीं सिखा सकतीं? और क्या सच हमेशा एक ही रूप में, सिंगुलर में ही मिलता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।